ஓம் சாந்தி. सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. एक्सरसाइज हो गई सबकी? हो गई? अभी आप सभी शांत होकर के तपस्वी मूर्त बनकर के बैठ जाइए. आज का टॉपिक आप सबके अनुकूल है. टॉपिक तो आप सबने सुन लिया होगा, संस्कार परिवर्तन, संस्कार मिलन. पहले उसका परिवर्तन करना है, फिर उसको मिला के चलना है. जिसकी जरूरत घर परिवार में बहुत 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 है, ऐसे है ना? आप हम सब जानते हैं कि प्राण बाप दादा ने वर्तमान समय हमें एक लक्ष्य दिया है. क्या लक्ष्य मिला आप सबको? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा. अब मोह नष्ट हो जाए, स्मृतियां जागृत हो जाए, उसके लिए हम सबको सबसे पहला पुरुषार्थ ये करना होगा कि हम परिवारों में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति को बनाए. क्योंकि जीवन मुक्त स्थिति उसको कहा जाता है जो सब प्रकार के विकर्मों से, सब प्रकार के विकारों से, सब प्रकार की कमियों से, सब प्रकार की पुरानी आदतों से मुक्त हो, विमुक्त हो. उस स्थिति का नाम है जीवन मुक्त स्थिति, जिसकी हमें चिरकाल से लेकर आशा है कि हम संसार में रहते हुए जीवन मुक्त बन जाएं. अब इस महान स्थिति में स्थित होने के लिए, एक बड़ी असामी बनने के लिए संसार में भी बहुत कुछ करना पड़ता है. ऐसे ही इस सर्वोत्तम स्थिति के सिंहासन पर स्थित होने के लिए हम सबके पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी और पुण्य कर्मों का खाता चाहिए. क्योंकि जब तक हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी और पुण्य कर्मों का खाता नहीं है, तो इस महान स्थिति के अंदर हम अपने आप को स्थित नहीं कर सकते. लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उस ऊंच लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने पुराने विचलित करने वाले संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी. तो उसके लिए कहा जाता है कि जिसकी स्मृति ऊंची है उसकी स्थिति ऊंची है. स्मृति संस्कारों को बदलने के लिए अमोघ शस्त्र है. संसार में सबसे बड़ा शस्त्र पुराने संस्कारों को बदलने के लिए श्रेष्ठ स्मृति है. आप देखें, ये प्राण बाप दादा ने हम बच्चों के अंदर चेंज लाने के लिए सबसे पहले स्मृतियों को चेंज किया. हमारी स्मृतियों के अंदर बहुत आदि अनादि स्मृतियां जागृत कर दी कि बच्चे तुम एक श्रेष्ठ और महान आदि अनादिकाल से पवित्र आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, इष्ट आत्मा हो, देव आत्मा हो। तो जैसे इस स्मृतियों के अंदर हम विचरण करते हैं तो हम अपनी मनोस्थिति के ऊपर, अपनी दृष्टि वृत्ति के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है कि इतनी संस्कारों को उज्जवल बनाना है हम सबको, तो पहले तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि संस्कार किसे कहा जाता है, संस्कार कैसे बनते हैं। तो आज मैं आप सबका ध्यान इस बात की ओर खिंचवाना चाहती हूं, संस्कार, संस्कारों से संकल्प, संकल्पों से कर्म, कर्मों से संस्कार, फिर संस्कारों से संकल्प बनते हैं। ये एक चक्र चलता ही रहता है। आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया होगा, संस्कारों के अनुकूल हमारे संकल्प चलते हैं, संकल्पों के अनुकूल हमारी वृत्तियां, हमारे कर्म बनते हैं, और उन कर्मों के अनुसार फिर हमारे संकल्प चलते हैं। जो आज हमारे संस्कार दूषित होने के कारण हमारे संकल्प भी दूषित हो गए हैं। अब संकल्पों को चेंज कैसे करें, उसके लिए प्राण बाप दादा ने हम सब बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया और कहा कि इस ज्ञान के तीसरे नेत्र को सदा खोल के रखो, जीवन की प्रयोगशाला के अंदर इसको हर वक्त यूज करो। क्योंकि ज्ञान नेत्र अगर खुला है तो ये संस्कार, पुराने संस्कार किसी चोर दरवाजे के द्वारा भी, जैसे चोर कहीं कोई दरवाजा खुला रह जाए, कोई खिड़की रोशनदान खुला रह जाए, तो उसके भीतर से प्रवेश करके व्यक्ति को लूट लेता है ना? ठीक इसी प्रकार जीवन की प्रयोगशाला में अगर ये नेत्र, आत्मिक नेत्र, तीसरा नेत्र अगर सदा खुला है तो अशुद्ध संस्कार, संकल्प, अशुद्ध संस्कार, चोर की न्याय हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और हमारे संस्कारों का ज्ञान, योग, मनन, चिंतन के द्वारा शुद्धिकरण हो जाएगा। एक बात और भी हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी संकल्प अगर बहुत वेग से हमारे अंदर चलता है, अगर हम उसके ऊपर ज्ञान और योग का पहरेदार नहीं बिठाते तो वो संकल्प एक गहरा संस्कार छोड़ के जाता है, हमसे कुछ न कुछ विकर्म करवा ही लेता है। अब हमसे कोई विकर्म ना हो, क्योंकि अभी इस समय हमारी स्मृतियों में है कि हम एक जागती ज्योत आत्मा है, तो हमसे कोई भी कर्म ना हो तो उसके लिए हमें अटेंशन देना होगा कि कोई संकल्प बार 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 ना चले। और वो संकल्प अगर बार बार चलता रहेगा, मैं अगर ज्ञान और योग का पहरेदार उस पर नहीं बिठाऊंगी तो वो मुझसे विकर्म बना देगा। परंतु मेरा इस समय का लक्ष्य है कि मुझे इन सारी बुराइयों से, इन निकृष्ट संस्कारों से मुक्त होना है, विमुक्त होना है, जीवन मुक्त बनना है। तो उसके लिए भी हमें संग की जरूरत है, क्योंकि एक श्रेष्ठ संघ का अगर प्रवाह होगा, श्रेष्ठ संघ के अंदर हम बैठे होंगे जैसे आज बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ आते ही बहुत अच्छा लग रहा था, मैं साक्षियों के देख रही थी कि सब एक माला के रूप में बैठे हैं, बीच में एक पैंडल है, माला के गले में हार डालो तो बीच में एक पैंडल है, बाकी सब माला के रूप में बैठे हैं। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि संस्कार मिला करके बैठे हैं, जैसे दाने से दाना मिला होता है तो सुंदर माला बन जाती है, अगर दाने के साथ कुछ गायब हो तो वो माला सुंदर देखने में नहीं आती। तो आज आप सब विजयी माला के रूप में बैठे हैं और ये संकल्प लेके बैठे हैं कि हमें अपने संस्कारों को इस बट्टी के अंदर चेंज करके ही जाना है। तो मैं ये बता रही थी, संस्कारों को बदलने के लिए संघ भी बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ चाहिए। आप सबको याद होगा, जब आप ज्ञान में शुरू शुरू में आए थे तो बहनों ने आप सबको एक ऐसा चित्र दिखाया था, योगी का चित्र, तपस्वी का चित्र, और जिसकी चार फाउंडेशन स्टोन दिखाई थी। याद करिए, वो चित्र सामने आ गया और वो चार फाउंडेशन स्टोन के अंदर क्या लिखा हुआ था? मन, वचन, कर्म की शुद्धि। पहला स्तंभ जो था उसमें लिखा था मन, वचन, कर्म की शुद्धि। दूसरा जो स्तंभ था उस पर लिखा हुआ था सत्संग। तीसरा जो स्तंभ था उस पर लिखा हुआ था अन्न की शुद्धि। चौथा जो स्तंभ था उस पर लिखा हुआ था देवी गुणों की धारणा। याद किया आप सबने? वो चित्र आपके सामने एक योगी और तपस्वी का आ गया। तो अगर योगी और तपस्वी बनना है, अपने संस्कारों को कुंदन के समान तेजस्वी बनाना है, तो जीवन के अंदर ये चारों चीजों की, चारों धारणाओं की तरफ विशेष हम सबका ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे निकृष्ट संस्कारों को हम चेंज करना चाहते हैं, जब तक हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म शुद्ध नहीं हुआ, तब तक मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो नहीं सकता है। दूसरा सत्संग, भक्ति काल में भी हम जहां कहीं जाते तो ये कहा जाता कि सत्संग करने से ही शुद्धि होती है। तो उस समय हम सोचते थे कि भगवान का जहां कहीं ध्यान लगाने का कोई तरीका मिले या भजन करने का कोई तरीका मिले, उसी का नाम सत्संग है। वहां सत्संग को अलग अलग कर दिया, परंतु यहां पर हमें आने से ये पता लगा कि सत्य एक परमात्मा है, वो भी सत्य है, मैं भी सत्य हूं। परंतु वो जो सत्य है उसको हम प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। अब उस कल्याणकारी पिता के साथ मुझे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते संग करना है, अपना साथी और सारथी बना करके उसको चलना है, जिसको कल जानकी दादी रू रूहान कह करके बोल रही थी कि भगवान से रू रूहान करने में बड़ा मजा आता है। तो वो कौन है? वो जो सदा सत्य है, सदा शिव है, उनके साथ हमें अपने बुद्धि का संग करना है। अब मैं चाहती हूँ मेरा मन वचन कर्म भी शुद्ध हो जाए, मेरा सत्य प्रभु के साथ सदा संग लगा रहे, उसके लिए अन्न का शुद्ध होना परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक अन्न शुद्ध नहीं हुआ तब तक मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो अन्न शुद्धि से हमारा अभिप्राय क्या है? बाबा ने हम सबका ध्यान इस बात की ओर खिंचवाया कि अनशुद्धि से अभिप्राय ये है कि शुद्ध पदार्थों से बना हुआ हो, शुद्ध वातावरण से बना हुआ हो और शुद्ध हाथों से बना हुआ भोजन ही शुद्ध भोजन है। अब हम सबका ध्यान अगर संस्कार परिवर्तन में आता है जाता है तो हमारे को इस बात की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा कि हमारा अन्न कहाँ तक शुद्ध है। मुझे याद आता है यज्ञ के अंदर इन बातों की तरफ बहुत विशेष ध्यान दिया जाता, यहां तक कि हमें बहुत शुरू शुरू की यादें आती है, कभी बीमारी शिमारी के टाइम हम बोली दादी के पास जाते, बोली दादी थोड़ा मक्खन चाहिए, थोड़ी ये चाहिए, तो कहती थी जब तक बाबा को भोग नहीं लगा तब तक कुछ नहीं मिल सकता आप लोगों को, है ना। और हमने देखा बाबा भी इन बातों की ओर बहुत ध्यान हम सबका खिंचवाते थे और बाबा कभी भी ऐसे वैसे स्थान से आया हुआ हो, ऐसे वैसे व्यक्ति की दृष्टि पड़ी हुई हो, ऐसे वैसे व्यक्ति का अन्न हो, उसको स्वीकार नहीं करते थे। तभी उनकी अवस्था चढ़ती कला सूरज के चढ़ते सूरज के समान थी। आज मेरी माताओं और बहनों इस बात को हम थोड़ा अंतर मन में जाकर विचार करें कि क्या हमारा अन्न, हम चाहते तो है संस्कार शुद्धिकरण हो, क्या हमारा अन्न इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध व्यक्तियों के हाथ से खाती हूँ, शुद्ध वातावरण में बना हुआ खाती हूँ, या सोच लेती है अरे कौन देखता है कौन जानता है, जैसा आता है वैसा खा ले। तभी वो चमत्कार, वो सोनी सूरत, मोहिनी मूरत, सतो प्रदान सूरत दिखाई नहीं पड़ती है। नहीं तो आज हम सब के मुखरों के अंदर क्या होना चाहिए, सतो प्रधानता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, परंतु आज वो दिव्यता कम दिखाई देती है। उसका कारण अनशुद्धि के ऊपर जितना ध्यान होना चाहिए उतना नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे अन्न का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप अभी यज्ञ के अंदर आए हुए हैं, यज्ञ में सिंपल भोजन बनता है परंतु ब्रह्मचारी लोगों के हाथ का भोजन बनता है, एक शुद्ध वातावरण शुद्ध संकल्पों को लेकर बनता है, बाबा को भोग लगा करके बनता है और हम सब प्रसाद समझ करके खाते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमारे माइंड के ऊपर कैसा पड़ता जो आप अनुभवी हैं। और वही भोजन अगर हम घर के अंदर खाते हैं, जैसे कहते हैं ना गुरुद्वारे का बना हुआ करा प्रसादा, वाहे गुरु का नाम लेकर के बनाया जाता है, तो उस थोड़ा सा खाने से तृप्ति हो जाती। और वही हलवा घर में बनाते और अनेक प्रकार की वृत्तियों में रहकर के बनाया जाता, उसका प्रभाव क्या पड़ता वो आप सब जानती हैं। तो इसलिए अन्नतोष के ऊपर, अन्न शुद्धि के ऊपर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हमें जीवन मुक्त बनना है, आसुरी संस्कारों से मुक्त होना है, आसुरी वृत्तियों से मुक्त होना है, तो उसके लिए भोजन की शुद्धिकरण होना ही चाहिए। और चौथा स्तंभ है दैवी गुणों की धारणा। अब हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में सद्गुण आ जाए, क्योंकि व्यक्ति विशेष की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके अवगुणों से होती है, और हम अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं तो चाहते हैं कि सद्गुण ही हमारी पहचान है। तो सद्गुण का वास हमारे जीवन के अंदर सदा ही रहे उसके लिए क्या करना होगा, अवगुणों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अवगुण जब तक हमारे भीतर से नहीं निकलेंगे, आंतरिक स्थिति सूक्ष्म रीति से नहीं निकलेंगे, तब तक सद्गुणों का वास नहीं होगा। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम एक कलश लेते हैं जो गंदगी से भरा हुआ है, परंतु हम नहीं चाहते उसको गिरा दिया जाए। हम क्या करेंगे, उसको नलके के नीचे रख देंगे, साफ पानी आता जाएगा, गंदा पानी निकलता जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे मनों को शुद्ध करने के लिए बाबा ने एक यज्ञ रचा है। उस यज्ञ का नाम क्या है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व अगर राजाई को प्राप्त करना है तो मन रूपी घोड़े को मेद कर, स्वाहा कर, चेंज कर, किसमें, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अंदर। अब इस ज्ञान यज्ञ में हम सब बैठे हैं और हम सब अपने आप को चेंज करने के लिए आए हैं, और वो चेंज तभी आएगा जब इस ज्ञान यज्ञ के अंदर पारसनाथ प्रभु जो ज्ञान मुरली चलाता है, उस ज्ञान मुरली का जितना प्यार से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण होगा। जैसे आप सब जानते हैं कि पारस चुंबक लोहे को सोना बना देता है, और वो तो सदा ही सतो प्रधान है, सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, सदा ही पारसनाथ है। तो उस पारसनाथ परमात्मा पिता से अपना योग रखने से या उनके द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य का मनन चिंतन, श्रवण मनन चिंतन करने से क्या होगा, हमारे अंदर के जो संस्कार, मैले कुचैले संस्कार है, उसके अंदर चेंज जाएगा। और जितना उसके अंदर हम गहराई में जाते जाएंगे, उतना हमारे अंदर अपने आप में हमारी जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होने लगेगी, और जब वो शक्तियां जो हमारी निजी संपदा है वो हमारे में आ जाएगी, तो हमारा जीवन अपने आप में एक श्रेष्ठ और महान बनता ही जाएगा। तो उसके लिए हमें त्याग और तप और वैराग की पुट लगानी ही होगी। त्याग तप और वैराग, संसार में रहते हुए ये तीन धारणाएं हमारे जीवन के अंदर होना परम आवश्यक है। त्याग से भाग्य भी बनता है, बल भी मिलता है, और तप से निखार आता है, और वैराग से हमारी अंदर एक शक्ति ऊर्जा पैदा होती है। ये तीनों चीजों की हमारे अंदर बहुत जरूरत है चेंज लाने के लिए, त्याग तप और वैराग। त्याग से भाग्य मिला, बल मिला, क्योंकि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए हमें ज्ञान का बल, गुणों का बल, धारणाओं का बल, दुआओं का बल जरूरी है, योग का बल, तपस्या का बल बहुत जरूरी है। क्योंकि तो जब तक ये सब प्रकार के बल हमारे पास नहीं होंगे, तब तक भी हमारे संस्कारों में शुद्धिकरण नहीं होगा, बार बार वो संस्कार फिर से जागृत होते रहेंगे, जो आप सब अच्छी प्रकार से अनुभवी हैं। इसके लिए मनन चिंतन रूहान करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हम बच्चों को अपने आप का आंतरिक अंतर्मुखता की गुफा में बैठना भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अंतर्मुखता ही हमें सब प्रकार के बाहर मुखी, जो बाहर से हमारे अंदर अनेक प्रकार के संकल्प, अनेक प्रकार के संस्कार अटैक करते हैं, जब हम अंतर्मुखता में बार बार जाने का अभ्यास करते हैं तो वो संकल्प वो संस्कार अटैक करना बंद कर देंगे और हम अंदर ही अंदर अपने आप को चेंज चेक एंड चेंज करते हुए स्वतः प्रदान संस्कारों में ला सकते हैं। आज वो समय से हम गुजर रहे हैं जब साइंस रेत में से भी अनाज पैदा कर रही है। साइंस बहुत फालतू फालतू सामानों को भी चीजों को भी चेंज कर रही है, रिफाइन कर रही है। तो क्या भगवान ने हमको भी एक ऐसी साइलेंस की शक्ति और साथ साथ शुभ भावना और शुभ कामना की ऐसी जड़ी बूटी दे दी है, जिस जड़ी बूटी के द्वारा, जिस संजीवनी बूटी के द्वारा हम भीतर जाकर के बहुत सूक्ष्म जो पड़े हुए हमारे कुटिल कुटिल संस्कार है उनको छेद करके सत्व प्रदान बन सकते हैं। इसलिए मेरी बहनों, शुभ भावना और शुभ कामना कुछ की धारणा जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, एक माता हमारे पास आई और वो रोज आने लगी और रोज आना अपनी बहू बेटी के बारे में बताती रहती, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, आज घर में इतनी लड़ाई हो गई जो पुलिस को बुलाना पड़ा, ये हो गया वो हो गया। हमने उसको कहा, देख बहन, सिर्फ बहू का दोष नहीं है, दोषी कौन, उसमें दोष तेरा भी है, क्योंकि तेरी जैसी सोच होगी, जैसी तेरी समृद्धि होगी, जैसी तेरी सोच होगी, जैसा तेरा दृष्टिकोण होगा, विचार होगा, स्वभाव होगा, वैसे ही तुम्हारी बहू का व्यवहार होगा। तो कहते हैं, नहीं बहन जी, मेरी सोच तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा, सात दिन तुम अपनी सोच को अपनी बहू के बारे में बदल दो, अपने विचार अपनी वृत्तियों को बदल दो, फिर देखो उसका परिणाम क्या होता है। जेल जाना पड़ेगा जब घर ही एक सुखदायी वातावरण बन जाएगा। तो कहती है, ठीक है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हुई कि उस माता ने बिल्कुल अपनी सोच को बदला और ये सोच में लाया कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे संस्कार वाली है, बहुत अच्छे विचार वाली है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, उसकी सोच ने उसके आंतरिक संस्कारों को बदल दिया और वो जो घर के अंदर युद्ध का मैदान बना रहता था, वो युद्ध का मैदान सुख का स्थान बन गया, सुख की लेन देन होने लगी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम जो भी संकल्प पैदा होते हैं, जिन्हीं संकल्पों के आधार से संस्कार बनते हैं, और आपको पता है कि संस्कार संकल्प की रफ्तार रॉकेट से ज्यादा तेज है, हमारे बोलने से पहले ही किसी के पास पहुंच जाती है। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक राजा अपने वजीर के साथ रोज सैर करने जाता था। सैर करते करते वो एक हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता था। जब वो हलवाई की दुकान पर पहुंचता तो हलवाई सोचता कि मेरे शहर का, मेरे वतन का राजा आया है। वो उनकी बहुत आवाभगत करता, बहुत कुछ उनको खिलाता पिलाता। परंतु जब राजा उस हलवाई को गौर से देखता तो उसके अंदर थोड़े दूषित संकल्प पैदा होने लगते। तो राजा सोच में पड़ जाता कि भाई क्या बात है, वो मुझे इतना सत्कार देता है, इतना मुझे आदर देता है, इतना मुझे मान सम्मान देता है, पर फिर भी मेरे अंदर गलत संकल्प की इसके प्रति पैदा होता है। वो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है। फिर उसने एक दिन अपने वजीर को ही कह दिया कि भाई मैं तो इसका हल नहीं निकाल सका, तू बता कि इसका क्या हल है, क्यों ऐसा होता है जबकि वो हमारा आदर सम्मान करता ही है। तो वजीर ने कहा ठीक है, आज आप मेरे साथ नहीं जाओगे, मैं अकेला जाऊंगा, है ना, मैं इसको आपका हल निकाल करके देता हूँ। तो वो वजीर अकेला ही हलवाई सैर करते करते हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। वजीर को देखकर भी वो बहुत हलवाई उनका आदर सत्कार करता, खिलाता पिलाता। फिर वजीर ने कहा चलो हम थोड़ी देर के लिए आपस में बैठते हैं, लेन देन करते हैं। उसने कहा ठीक है। तो वजीर उनको बड़े प्यार से बोलता है, भाई जब हम तुम्हारी दुकान पर आते हैं तुम हमारा बहुत आदर सत्कार करते हो, परंतु एक बात बताओ, तुम्हारे मन के अंदर कुछ है? तो पहले बोलता है कि नहीं। फिर वो बड़े प्यार से पूछते हैं, तुम्हें कुछ दंड नहीं दिया जाएगा, तू बता तो सही तेरे मन में कुछ है? जैसे चार पांच बार पूछने के बाद वो बताता है कि हाँ, मेरे मन के अंदर जब आप दोनों आते हैं एक संकल्प जरूर चलता है। तो वो बोलते हैं क्या संकल्प चलता है? तो कहता है मुझे बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, वो बिकते नहीं है, और मेरे मन में यही संकल्प चलता है ये राजा कब मरेगा, कब मेरे चंदन के पेड़ बिकेंगे। आप बताइए, बिना बताए वो संकल्प उसके पास पहुंच जाता जो राजा के मन में भी उसके प्रति दूषित संकल्प पैदा होते। तो आप सोचिए, आप परिवारों के बीच में रहते हैं, हम भी ईश्वरीय संस्थान के अंदर रहते हैं, अगर हम अपनी सोच अपने संकल्पों को रिफाइन नहीं करेंगे, शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तो हमारे निकृष्ट संकल्प रॉकेट से भी ज्यादा तेज एक दूसरे के पास पहुंचकर वह विरोध वैमनस्य की भावनाएं जागृत कर सकती है, कर सकती है। आज परिवारों में ये जो दूरियां बढ़ती जा रही है, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, उसका मूल कारण संकल्पों का शुद्धिकरण, संस्कारों का शुद्धिकरण ना होना। तो हमें अपने आप को योग अग्नि के द्वारा, कहते भी हैं युगाष्ट अग्नि दग्धो विकर्मा, योग की अग्नि के द्वारा अपने अशुद्ध संस्कारों की आहुतियां देना ही होगा, या अपने अंदर अर्पणम समर्पणम की भावनाओं को जागृत करना ही होगा। मैंने परसों भी आप सबको एक बात बताई थी कि जब तक समर्पणता नहीं आए तब तक भी शुद्धिकरण नहीं होगा। तो हमारे को अपने आप को बाबा के आगे समर्पण करना है, फिर कुछ स्वाहा कर, मैं और मेरे का समर्पण, फिर स्वाहा क्या करना, जो मेरे छोटे मोटे खोटे थोड़े थोड़े संस्कार संकल्प छिपा करके रखे हुए हैं मैंने, जिसको कोई नहीं जानता, उसको मुझे स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डालनी हैं। और सफल क्या करना, अपना संकल्प अपना श्वास अपना समय जो मेरी निजी संपदा है उसको मुझे सफल करना है। कहते हैं सफल करो तो सफलता मिलेगी। तो मुझे एक तपस्वी बनकर के, एक योगी बनकर के अपने अंदर सच्ची लगन की अग्नि पैदा करके अपने आप को शुद्धिकरण करना है। उसके लिए सारांश में इतना सारा लंबा चौड़ा अगर आपको याद नहीं रहता तो आत्म स्मृति परमात्म स्मृति लक्ष्य की स्मृति सदा जागृत रखो। मुझे क्या बनना, मुझे देव आत्मा बनना है, मुझे नर नारायण लक्ष्मी जैसा बनना है, ये स्मृति आत्म स्मृति और परमात्म स्मृति तीनों स्मृतियां जहां जागृत है वहां अशुद्धता आ नहीं सकती है, और जहां ये तीन स्मृतियां सदा काल के लिए जागृत नहीं रहती, वहां अशुद्धता का वास होगा ही होगा। उसके लिए और थोड़ा सा मैं गहराई की तरफ आप सबका ध्यान खिंचवाना चाहती हूं। संस्कारों का चेंज होने के लिए पहली बात अपनी बुद्धि के अंदर धारण कर लो कि मैं तो, जैसे मीरा ने कहा, मैं तो गिरधर की हो गई। क्या भी आया उसके सामने, परंतु उन्होंने हंसते हंसते सब स्वीकार किया। इसी तरह से अपनी बुद्धि के अंदर भी ये बात अच्छी प्रकार से रहनी चाहिए कि मैं तो उस प्रभु की हो गई। अब मुझे संपूर्ण कर्मातीत होकर के वापस अपने घर जाना है। बाप याद रहे, घर याद रहे, और फिर मुझे संपूर्ण कर्मातीत होकर के जाना है, ये याद रहे। और चौथी बात ये याद रहे कि मुझे न्यारा और प्यारा होकर के जाना है। और पांचवी बात ये याद रहे कि मुझे संसार में रहते हुए कर्म योगी बनकर के रहना है ना। जब ये पांच स्मृतियां आपके अंदर उठते बैठते जागृत रहेंगी तो आपकी बुद्धि का लंगर इस संसार से उठ जाएगा। जब बुद्धि का लंगर उठ गया, जाने वाला राही तैयार हो रहा है, तो फिर खींचने वाले संस्कार कैसे आपको खींच सकते हैं? संस्कार तभी खींचते हैं जब हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। जैसे बताते हैं ना, एक नौका के अंदर बहुत सारे लोग सवार होके बैठे थे। रात्रि का टाइम था, नाविक ने नौका चलानी शुरू कर दी, परंतु रस्सी लंगर को खोला ही नहीं। और वो सोचने लगे कि रात भर नौका चलती रही है, क्योंकि चप्पू तो चल रहे थे, तो रात भर नौका चलती रही, हम इस छोर से उस छोर पहुंच ही जाने वाले हैं। परंतु जब सवेरा हुआ तो देखा जहां से चले थे वही खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई? क्योंकि नौका का लंगर जो था, रस्सी जो थी, वो उसी के साथ, किनारे के साथ बंधी हुई थी। तो अगर हमारी बुद्धि की रस्सियां, हमारे सूक्ष्म धागे इस संसार के साथ, इन संसार के कर्म बंधनों के साथ, इन संसार के वस्तु व्यक्ति वैभवों के साथ बंधी हुई हैं, तो बताइए हम इस पार से उस छोर सत्युगी स्वर्णिम दुनिया में कैसे जा सकेंगे? वो नजारे जैसे मम्मा बाबा को अपने नजारे दिखाई पड़ते थे, बाबा कृष्ण को चित्र को देखते ही उसको बड़े प्यार से किस करते थे, अरे मिच्छू मैं तो ये बनने वाला हूँ, आज वो नजारे हमारी नजरों में नहीं आते। और हम आपस में मिलकर के संस्कार मिलन मिला कर के भी नहीं चलते, क्योंकि संस्कार परिवर्तन होंगे तो संस्कार मिलन भी हो सकता है। अगर संस्कारों को, अशुद्ध संस्कारों का परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो शुद्ध संस्कार कहाँ ठहरेंगे, कहाँ आपस में एक दूसरे के साथ मिलान कर सकेंगे? तो अगर हमारी इच्छा है संस्कार परिवर्तन के बाद हमारा संस्कार मिलन हो और हम सब मिलकर के रास करें, तो वो तभी कर सकते हैं जब हाथ में हाथ हो, एक दूसरे के संस्कारों के साथ हमारा आपस में प्यार हो, स्नेह हो, मानसिक रीति से सच्चाई और सफाई हो, और वैराग वृत्ति हो, त्याग और तप हो, तो हम एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाकर संस्कारों के साथ संस्कार मिलाते हुए खुशी के गीत गाते हुए, जैसे कल आप सबने देखा क्या बढ़िया सीन लग रहा था, हम तो स्टेज पर देख रहे थे, वो इस छोर से लेकर उस अंतिम छोर तक सब ताल में ताल, हाथ में हाथ मिला करके डांस कर रहे हैं। ये है संस्कार मिलन की रास। परंतु सदा काल ये रास चलती रहे वो तभी होगा जब हम एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे की बातों को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे को अपने से सत्कार करेंगे देंगे। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की बातों को, जो कोई हमारे प्रति कुछ कहना चाहता है, देना चाहता है, हम उसने उसको स्वीकार ही नहीं किया और फिर हमने अपनी तरफ से सत्कार दिया ही नहीं, ना स्वीकार किया ना सत्कार किया, तो क्या होगा? आपस में संस्कारों का टकराव तो जरूर होगा ही। तो हम चाहते हैं हमारे संस्कार आपस में ना टकरे, तो उसके लिए एडजस्टिंग पावर चाहिए, एडजस्टिंग वृत्तियां चाहिए। आप देखेंगे जिस माता बहन को संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने परिवार के साथ एडजस्ट करना आता है, उसका कभी किसी के साथ टकराव नहीं होगा, सब उसको बहुत प्यार करेंगे, बहुत मान और सम्मान देंगे। और जिसको एडजस्ट करना नहीं आता, उसके घर में रोजाना युद्ध का मैदान बना ही रहेगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम जहां रहे, जिस भी वातावरण में रहे, जिस प्रकार से भी हमारे को रखा जाए, वहां हमें एडजस्ट तो करके चलना है। जितना एडजस्टमेंट होगी उतना ही आपस में प्यार होगा, स्नेह होगा, मान और सम्मान मिलेगा, उतना ही हम एक दूसरे के लिए हाथ में हाथ, ताल में ताल मिला करके चलेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर थोड़ी थोड़ी बातों में विरोध और भावनाएं पड़ती जाएगी। उसके साथ साथ बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति हम सबको बताई कि बच्चे अगर संस्कार मिलन की रास करना चाहते हो, मेरे साथ संस्कार मिला के चलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब आपस में संस्कार मिला करके चलोगे तभी जय जयकार होगी। अगर हम चाहते संसार के अंदर जय जयकार हो, हम एक दूसरे के समीप आए, हम संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएं और हम अपनी संपूर्णता की शक्ति से संसार के अंदर समाप्ति का लय फैला दे, तो उसके लिए आपस में संस्कार को मिलाना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ मिटाओ, कुछ समाओ, कुछ भुला दो। क्योंकि जब तक कुछ भुलाएंगे नहीं, कुछ समाएंगे नहीं, कुछ मिटाएंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर जीवन मुक्त बनना है तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे एक ताबीज अपने साथ हमेशा रखो, रिगार्ड देना है, रिगार्ड लेना है। जब मैं किसी को रिगार्ड दूंगी, मैं किसी को सहयोग देंगी, मैं किसी को सम्मान दूंगी, तब मेरे को भी कोई रिगार्ड, सहयोग और सम्मान देगा। तो ये तावीज अपने साथ, और फिर एक महामंत्र भी अपने साथ रखो कि पहले आप, पहले आप, पहले आप। तो जब आप दूसरों को कहेंगे पहले आप, तो वो कहेंगे पहले आप, तो आप माने आपने प्रेम प्यार से बोला, उसने भी आपको प्रेम प्यार से उत्तर दिया, तो आपस में प्रेम की गंगा बहने लगेगी। और वो प्रेम की गंगा जहां बहेगी वहां खुशहाली और हरियाली आएगी जरूर। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं यही शुभ कामना और शुभ भावना आप सबके प्रति करना चाहती हूं कि आप यहां से ये प्रसाद लेकर के जाओ कि हम दृढ़ संकल्पों की तीली लगाकर अपने पुराने संस्कारों को भस्मीभूत करेंगे, जला देंगे, और जो हमारा पुराना चौपड़ा इस तरह का बन चुका रिकॉर्ड, इस तरह का बन चुका है, उस रिकॉर्ड को चेंज करेंगे किसे, दृढ़ संकल्प से कि मुझे अब सत्व प्रधान संपूर्ण संपन्न बनना ही है, अपने बाप के समान बनना ही है और अपने जीवन की धारा से संसार को नया मोड़ नई दिशा प्रदान करनी है। और जो मेरा लक्ष्य है कि मैं संसार में रहते हुए एक जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करूं, वो मुझे अपनी स्थिति को बनाना ही है। यही घर परिवार को छोड़कर जो आप इस भट्टी के अंदर आए हैं तभी उसकी सफलता होगी, नहीं तो आए थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिली, थोड़ी अच्छी अच्छी बातों को अंडरलाइन किया, परंतु परनाला वहां का वहां ना रहे। तो यही शुभकामना है कि आप जो लक्ष्य लेके आए हो तो चेंज हो करके जाओ, और चेंज में प्रगति है, परिवर्तन में प्रगति है, उन्नति है और प्रगति में सफलता है। ये ओम शांति शांति। अभी हम 2-5 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठते हैं।
Yeah.